अमेरिका भेदभाव का साम्राज्य।
श्रोताओं, कार्यक्रम अमेरिका भेदभाव का साम्राज्य की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है। मरियम मेहर दादी और कमर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम में अमेरिका में जातिवाद की जड़ों की समीक्षा करेंगे।
अमेरिका में जातिवाद का आरंभ यूरोपियों के इस देश में पलायन के साथ आरंभ हुआ। ब्रिटिश, फ्रांसीसी, स्पेनिश तथा अन्य श्वेत वर्ण के लोगों ने अमेरिका पलायन करके वहां पर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के प्रयास आरंभ कर दिए। इन लोगों ने अमेरिका के स्थानीय निवासियों अर्थात रेड इंडियंस को वहशी या असभ्य बताकर स्वयं को श्रेष्ठ दर्शाने की कोशिश की। इन्होंने श्वेतों को अश्वेतों पर वरीयता दी। इस प्रकार अमेरिका में जातिवाद का बीज बोया गया। अमेरिका एक स्वतंत्र देश घोषित होने के समय न केवल ये कि जातिवाद का वहाँ से सफाया नहीं हुआ, बल्कि 17वीं शताब्दी तक इसका वहाँ पर बोलबाला रहा।
पलायनकर्ता यूरोपियों ने अमेरिका महाद्वीप के मूल नागरिकों अर्थात रेड इंडियंस का खुलकर शोषण करने के साथ ही अफ्रीका से लोगों को दास बनाकर अमेरिका लाना शुरू किया ताकि वे उनकी सेवा करते रहें। सन 1500 से 1800 ईस्वी के बीच लगभग 1.5 करोड़ अश्वेतों को मजदूरी के लिए अफ्रीका महाद्वीप से अमेरिका लाया गया। अमेरिका के दक्षिणी राज्य कृषि की दृष्टि से उपयुक्त थे, जिसके कारण वहां के जमींदारों ने अश्वेतों को नौकर बनाकर उनका खुलकर दोहन किया। बाद में अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में हुए गृह युद्ध की समाप्ति और दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा के साथ अमेरिकी समाज नए चरण में प्रविष्ट हुआ।
सन 1865 में अमेरिकी संविधान के 13वें अनुच्छेद में सुधार के साथ, हालांकि इस देश में दास प्रथा के अंत की घोषणा की गई, किंतु आज भी व्यवहारिक रूप में वो दूसरे रूप में मौजूद है। अमेरिका में रहने वाले बहुत से अश्वेत आज भी निर्धनता में जीवन गुजार रहे हैं। उनके बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ने का अधिकार नहीं जहां पर श्वेत बच्चे पढ़ते हैं। अमेरिका के श्वेत आज भी बहुत से सामाजिक अधिकारों से वंचित हैं। उदाहरण स्वरूप, वे अमेरिका के बड़े पदों पर आसीन नहीं हो सकते। अतिवादी श्वेतों की ओर से अश्वेतों पर आक्रमण और उनके विरुद्ध हिंसा तथा इस संबंध में न्याय न मिलने के कारण उनके नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है। द्वितीय विश्वयुद्ध में संगठित मोर्चे के मुकाबले में बहुत बड़ी संख्या में अश्वेतों की उपस्थिति से यह आशा जागृत हो गई थी कि अब उन्हें श्वेतों के मुकाबले में न्याय मिल जाएगा, किंतु ये एक सपना सिद्ध हुआ। अमरीकी समाज में पाए जाने वाले जातिवाद के चलते अश्वेतों को ये समझ में आ गया है कि इस देश में जातिवाद को समाप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष की आवश्यकता है। यही कारण है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन आरंभ हुआ।
सन 1955 से 1968 के कालखंड में नागरिक अधिकार आंदोलन को अमेरिका में अश्वेतों के संघर्ष के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल समझा जाता है। इस आंदोलन के नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग थे। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से अमेरिका में अश्वेतों को किसी सीमा तक सामाजिक अधिकार दिलाने में सफलता प्राप्त की। हालांकि अमेरिका में अश्वेतों को उनके अधिकार दिलाने के प्रयास किए जाते रहे हैं, किंतु वे आज भी जातिवाद की बलि चढ़ते रहते हैं। सन 1965 में इस आंदोलन के एक नेता मेलकम एक्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता मार्टिन लूथर की भी 1968 में हत्या कर दी गई। नागरिक अधिकार आंदोलन के नेताओं की हत्याओं ने यह सिद्ध कर दिया कि अमेरिका के भीतर जातिवाद और नस्लवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। सन 1964 में नागरिक अधिकार कानून में अमेरिकी समाज में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव को व्यवहारिक रूप से समाप्त किए जाने की घोषणा के बावजूद वहां पर आज भी नस्लवादी हिंसा जारी है। डोचे वेले की एक रिपोर्ट के अनुसार सन 1974 से 2018 के बीच अमेरिका में रहने वाले ब्लैक या अश्वेत की वार्षिक आय यहाँ के अल्पसंख्यकों की तुलना में बहुत ही कम है।
अमेरिकी जेलों की संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2011 में अमेरिकी जेलों में बंद लगभग 40% काले हैं, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उनका अनुपात मात्र 12% है। इसी रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका में सालाना आमदनी का औसत लगभग $26,000 है, जबकि अमेरिकी मूल के अश्वेतों की वार्षिक आय लगभग $17,000 ही है। अमेरिका की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और न्यायिक स्थिति के ही कारण इस देश के अश्वेतों के 50% बच्चे निर्धनता में जीवन गुजार रहे हैं। श्वेतों की तुलना में वहाँ पर अश्वेतों की आय बहुत ही कम है। बहुत से अवसरों पर श्वेतों की तुलना में अश्वेतों का वेतन आधे से भी कम होता है।
पंडित फैक्ट नामक अमेरिकी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सन 2012 में हर 36 घंटे में एक अश्वेत की हत्या पुलिस के हाथों की गई, जबकि सन 2013 में हर 28 घंटे में एक अश्वेत की हत्या पुलिस के हाथों हुई। ये रिपोर्ट 26 अगस्त 2014 को काइटी सैंडर्स ले प्रकाशित की थी। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि मानवाधिकारों की रक्षा का दावा करने वाले देश अमेरिका के भीतर मानवाधिकारों की स्थिति क्या है।
अप्रैल सन 1999 में न्यूजर्सी के पुलिस केंद्र की रिपोर्ट भी अमेरिकी पुलिस की जातिवादी कार्रवाइयों की पुष्टि करती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मादक पदार्थ या स्मगलिंग या वो वस्तुएं ले जाने वाले संदिग्ध वाहनों को रोकने के लिए पुलिस सामान्यतः उन ड्राइवरों को अधिक रोकती है जिनका संबंध अश्वेत वर्ण के लोगों से या एशियाई मूल या लैटिन अमेरिका से होता है। ऐसी एक घटना में सन 1998 में एक बहुत ही खतरनाक घटना घटी। अमेरिकी पुलिस ने न्यूजर्सी हाईवे पर बिना किसी चेतावनी के एक ऐसी गाड़ी पर गोलीबारी की जिस पर दो लोग लैटिन अमेरिकी मूल के और एक अश्वेत मूल का सवार था। ये तीनों पुलिस की गोलाबारी से बुरी तरह से घायल हो गए। जब बाद में गाड़ी को रोका गया तो पता चला कि ये तीनों लोग न्यू जर्सी में बास्केटबॉल का एक मैच देखने जा रहे थे। अमेरिका में जहां पर पुलिस की हिंसा में निर्दोष लोग मारे जाते हैं, वहीं पर न्यायालयों में अधिकतर इनको क्लीन चिट दे दी जाती है। यही कारण है कि वहां पर पुलिस के जातिवादी व्यवहार और न्यायपालिका की ओर से उनके समर्थन पर आम लोग विरोध करते हैं। यदि इसी प्रकार की कोई घटना किसी विकासशील देश में होती है तो अमरीकी संचार माध्यम उसे बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जबकि अपने यहाँ ऐसी घटना को वो अनदेखा करने की कोशिश करते हैं।
सन 1973 में न्यूयॉर्क पुलिस के अधिकारी थॉमसिया ने 10 वर्ष के एक अश्वेत बच्चे की हत्या कर दी। अपना तर्क पेश करते हुए इस अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि वो 10 साल का ब्लैक बच्चा मुझ पर गोली चलाने वाला था। कितने खेद की बात है कि 10 साल के एक निहत्ते बच्चे को अमेरिकी पुलिस अधिकारी थॉमसिया ने गोली मारकर ख़त्म कर दिया, जबकि इस अमेरिकी पुलिस अधिकारी पर इससे पहले 14 वर्ष के एक किशोर की हत्या का आरोप था। 14 वर्ष के किशोर की हत्या से पहले इसी अमेरिकी पुलिस अधिकारी पर 22 वर्ष के एक युवा की हत्या का आरोप है जो उसके अनुसार चोरी करने का संदिग्ध था। जब हत्या के ये तीनों मामले न्यायालय गए तो न्यायालय ने 3 हत्या के आरोपी पुलिस अधिकारी को बरी कर दिया। तीनों मामलों में मारे जाने वाले निहत्य थे और उनके अपराधी होने का कोई प्रमाण भी नहीं मिल सका। इन तीनों को अपराधी बताने का दावा केवल इस पुलिस अधिकारी ने किया जिसका कोई गवाह नहीं मिला। इतनी बातें होने के बावजूद हत्यारे पुलिस अधिकारी को बाइज्जत बरी कर दिया। न्यायालय के इस निर्णय से तो ऐसा लगता है कि अमेरिकी न्यायालयों में इस देश की पुलिस की ऐसी छवि है कि उसे हर स्थिति में क्षमा कर दिया जाए, चाहे उसने हत्या ही क्यों न की हो।